आज है 28 जुलाई दिन मंगलवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति समेत प्रतिष्ठित लोगों ने दी श्रद्धांजलि। पंजाब के मुख्यमंत्री ने चरमपंथी हमले के बाद पाकिस्तान के उच्चायुक्त के साथ मुलाकात की रद्द।
बादल साहब ने विचार किया बहुत गहराई से और वो इस पर पहुंचे कि जो मौजूदा हालात हैं इसमें पाकिस्तान के हाईकमिशनर को मिलना ठीक नहीं हो रही है।
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स ने धाविका दुती चंद के मामले में आईएफ के पाबंदी के फैसले को 2 साल के लिए किया स्थगित।
नहीं, हारने का तो कभी सोचा नहीं मालूम, क्योंकि मेरे को पहले ही पता चला था कि मैं ठीक हूँ, मैं कोई गलती नहीं किया, कोई डोपिंग नहीं किया, वो मेरे साथ जो होगा वो सही होगा, वो जज साहब।
लेकिन पहले सुनते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंच गया है। मिसाइल मैन नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सोमवार शाम शिलांग में निधन हो गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी उन्हें सलामी दी। त्रिपोली की एक अदालत ने लीबिया के निर्वासित नेता कर्नल गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम को मौत की सज़ा सुनाई है। उनके अलावा 8 और लोगों को युद्ध अपराधों और 4 साल पहले कर्नल गद्दाफी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों को दबाने का दोषी पाया गया है। गुप्तचर विभाग के पूर्व प्रमुख अब्दुल्ला अल सेनुसी और पूर्व प्रधानमंत्री अल बगदादी अल मोहम्मदी को भी मौत की सज़ा सुनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत में सैफ अल इस्लाम के वकील ने बीबीसी को बताया कि यह मुकदमा ही गैरकानूनी और पक्षपातपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र और एमनेस्टी इंटरनेशनल दोनों मानवाधिकार संस्थाओं के मुताबिक यह मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक नहीं है। राष्ट्रपति ओबामा ने कुछ देर पहले इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में अफ्रीकी संघ को संबोधित किया। ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस संस्था को संबोधित किया है। इस संबोधन में राष्ट्रपति ओबामा ने व्यापार, सुरक्षा और मानवाधिकारों पर बात की। उन्होंने नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे एक आदर्श व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि अफ्रीका और इसके लोग दुनिया के लिए सशक्त प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। हमें मानवीय गरिमा को कायम रखना चाहिए। गरिमा यानी ये मूल विचार कि इंसान होने के नाते, चाहे हम किसी भी देश के हों, कैसे भी दिखते हों, हम सभी बराबर हैं और हम सब पर ईश्वर की कृपा है। हर व्यक्ति योग्य है, अहम है और हर व्यक्ति से हमें शालीनता और इज्जत से पेश आना चाहिए। ये थे राष्ट्रपति ओबामा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मिस्र की राजधानी काहिरा में एक फर्नीचर फैक्ट्री में आग लगने से कम 19 लोग मारे गए हैं और 22 लोग घायल हो गए हैं। इस आग को काबू में लाने के लिए 30 अग्निशमन इंजन लाए गए। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि इस 3 मंजिला इमारत ने आग सुरक्षा का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया था। ऐसा माना जा रहा है कि लिफ्ट में एक गैस बॉटल के फूट जाने से ये आग लगी। रूस में विपक्षी दल के 3 राजनेताओं का कहना है कि उन्हें स्थानीय चुनावों में भाग लेने से रोका जा रहा है, इसलिए वे भूख हड़ताल कर रहे हैं। ये नेता रूस के मुख्य विपक्षी गठबंधन परनास से संबंध रखते हैं, जो सितंबर में होने वाले क्षेत्रीय चुनावों के लिए चुनावी अभियान कर रहे थे। इस संस्था ने हफ्तों लगकर चुनाव के लिए लोगों का नाम दर्ज कराने का काम किया, लेकिन अधिकारियों ने इतने सारे नामों को नामंजूर कर दिया कि परनास चुनाव के लिए योग्यता के मानक तक भी नहीं पहुँच पाई। परनास के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सारे हस्ताक्षर सही हैं और इनको नामंजूर करने से यही संकेत मिलता है कि क्रेमलिन अपने प्रतिद्वंदियों से डरता है। बहरीन में अधिकारियों का कहना है कि राजधानी मनामा के दक्षिण में एक बम विस्फोट में 2 पुलिसकर्मी मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत कई नेताओं और प्रतिष्ठित लोगों ने श्रद्धांजलि दी। देश में जहां 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें राष्ट्र रत्न बताया और कहा कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि ये होगी कि देश के लिए उनके द्वारा देखे गए सपनों को साकार किया जाए। वैभव श्रीवास्तव।
भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर गुवाहाटी से विशेष विमान के जरिए दिल्ली लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी उन्हें सलामी दी। भारतीय संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए कहा,
कल शाम को अचानक बड़े दुखद समाचार मिले कि भारत ने अपना रत्न खो दिया। मां भारती का एक जगमगाता रत्न लुप्त हो गया। कलाम साहब राष्ट्र रत्न पहले थे, राष्ट्रपति बाद में थे। कोई कल्पना कर सकता है कि जिस व्यक्ति ने बचपन में अखबार बेचे हो, आज देश और दुनिया के सारे अखबार उस व्यक्ति के नाम से भरे थे।
पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने अपने स्कूली दिनों में अखबार बांटने का काम किया था। अखबार बेचने से शुरू करके देश को वैज्ञानिक शक्ति बनाना, फिर भारत का राष्ट्रपति बनना एक विलक्षण उपलब्धि है। ऐसा वही कर सकता है जिसकी सोच बहुत बड़ी हो और विज्ञान में गहरी रुचि हो। इन दोनों ही चीजों में उनकी तुलना मुश्किल है। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने दिखाया कि रबर स्टैंप कहलाने वाला राष्ट्रपति कैसे पूरे देश के मानस पर अमिट छाप छोड़ सकता है। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद वो युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में संवादों में शिरकत किया करते थे। जीवन की अंतिम सांसें लेने से ऐन पहले वे छात्रों से ही बात कर रहे थे। उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से नई दिल्ली के 10 राजाजी मार्ग स्थित उनके आवास पर ले जाया गया, जहां कई हस्तियां जैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, भाजपा प्रमुख अमित शाह, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने उनके अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्विटर और फेसबुक के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन से लेकर फिल्म जगत के बड़े नाम जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और एआर रहमान तक समाज के हर वर्ग ने इस महान हिंदुस्तानी को सलाम किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने डॉक्टर कलाम को सम्मान देते हुए कहा,
ये मेरा सौभाग्य रहा कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का जो हमने प्रयास शुरू किया है, उस प्रयास के अंतर्गत स्कूली छात्रों के बीच में हम साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स को लेके कैसे प्रोत्साहित उन्हें कर सकते हैं, उनका कैसे रुझान बढ़ा सकते हैं, इस प्रयास में डॉक्टर कलाम खुद आगे बढ़ के उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की, इनॉग्रेट किया। मेरी इच्छा है कि अभी अभियान उनके नाम से जुड़ा रहे और उनकी जो इच्छा थी कि साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने।
दिन में 4 बजे के बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास को जनता के लिए खोल दिया गया। परिवार की इच्छा अनुसार उनका अंतिम संस्कार तमिलनाडु के जिला रामेश्वर में किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का देश को विकसित बनाने का संदेश और उनका दिखाया रास्ता आने वाली सभी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता रहेगा।
हालांकि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका ट्विटर खाता आगे भी चलता रहेगा। अब कलाम के सहयोगी ने उनका ट्विटर अकाउंट इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर कलाम के नाम से सक्रिय कर दिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पंजाब के दीनानगर शहर में हुए चरमपंथी हमले के एक दिन बाद पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित के साथ मुलाकात को रद्द कर दिया है। प्रकाश सिंह बादल और अब्दुल बासित के बीच मुलाकात 29 जुलाई को चंडीगढ़ में होनी थी। मुख्यमंत्री के सलाहकार हरचरण बैंस ने मीडिया को जानकारी दी कि दीनानगर और गुरदासपुर जिले में घटना के बाद ये मुलाकात रद्द कर दी गई है। कल हुई मुठभेड़ में 3 चरमपंथी के अलावा 7 लोग मारे गए थे। वहीं आज गुरदासपुर के उस थाने में धमाका हुआ जहां कल पुलिस और 3 चरमपंथियों के बीच घंटों मुठभेड़ हुई थी। पूरी जानकारी दे रहे हैं अमृतसर से रविंदर सिंह रॉबिन।
पंजाब के शहर गुरदासपुर में कल हुए टेरर अटैक में 7 भारतीयों की जान गई और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनको भी पंजाब पुलिस ने मार गिराया। अब इस घटना के बाद दौर शुरू हुआ इंट्रोस्पेक्शन का, जिसमें पंजाब पुलिस अपनी इंट्रोस्पेक्शन कर रही है कि कहाँ पे उनको कमी रह गई, कहाँ पे क्यों ये इतनी देरी लगी उसको ख़त्म करने में। ये तो है, लेकिन उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और उसको लेके पंजाब में, इसको लेके पंजाब पुलिस की तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जरूर मैं कहूँ कि लोगों में हुआ कि हाँ, अगर कोई टेरर अटैक पंजाब में होता है तो पंजाब पुलिस सक्षम है उसको निपटने के लिए। लेकिन इसके बाद दौर शुरू हुआ पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपने अपने बयान दर्ज कराने का, और जहाँ पर नेशनल पार्टी दिल्ली में संसद में बार बार इस बात को कह रही है कि पाकिस्तान के साथ अब सख्ती के साथ निपटना चाहिए, उसको लेके आज प्रकाश सिंह बादल जो कि पंजाब के सीएम हैं, उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से आई हुई मिलने की रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया। उनका कहना था, उनका ये मानना था कि जब ये एस्टेब्लिश हो गया है कि ये टेररिस्ट पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, तो वो एक प्रोटेस्ट के तौर पे वो उस मिलना मुनासिब नहीं समझ रहे पाकिस्तान हाई कमीशन को। इसके बारे में जब प्रकाश सिंह बादल के मीडिया एडवाइज़र हरचरण सिंह बैंस से बात की तो उनका कहना था,
बादल साहब ने विचार किया बहुत गहराई से और वो इस चीज पर पहुंचे कि जो मौजूदा हालात हैं इसमें पाकिस्तान को, पाकिस्तान के हाई कमीशन को मिलना ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने वो जो उनकी मुलाकात की रिक्वेस्ट थी उसको नामंजूर कर दिया है और ये मीटिंग नहीं हो रही है।
सर, ये इसकी कोई वजह होगी उनके मिलने की, वो क्यों मिलना चाहते थे?
वो तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, वो यहाँ आ रहे हैं तो उन्होंने बोला था कि चीफ मिनिस्टर साहब को कॉल ऑन करना चाहते हैं, तो उनका एजेंडा क्या है तो पता नहीं है, लेकिन कर्टसी कॉल होती है एक बार तो। लेकिन जो कल हुआ और जिसके जिसकी स्पष्ट संकेत है कि वो जैसे वो GPS की जो रीडिंग है वो साफ जाती है कि लोग पाकिस्तान से आए थे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बाल साहब ने फैसला किया है कि ऐसे हालात में मुनासिब नहीं होगा कि ऐसी मीटिंग की जाए।
कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जो आज घायलों को देखने के लिए दीनानगर गए, गुरदासपुर गए और उस जगह पे गए जहां पे टेरर अटैक हुआ, उन्होंने भी इस घटना की निंदा की और साथ में ये बात उन्होंने भी ये कही कि पाकिस्तान के साथ बड़ी सख्ती से सेंटर सरकार को निपटना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा,
दिस इज अ वायलेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड आई थिंक इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली।
ये भारतीय इलाके का अतिक्रमण है, इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि भारत बहुत ज्यादा देर तक इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।
इसी प्रकार जो पंजाब के कांग्रेस प्रधान हैं प्रताप सिंह बाजवा, वो भी घायलों को देखने के लिए आज अमृतसर के हॉस्पिटल्स में गए और उन्होंने केंद्र सरकार के साथ पंजाब सरकार को भी आड़े हाथों लिया कि कहीं ना कहीं पर इंटेलिजेंस नेग्लिजेंस जरूर है जिसके कारण पंजाब पुलिस को ये पता नहीं लग पाया कि ये टेरर अटैक होने वाला है।
ये थे अमृतसर से रविंदर सिंह रॉबिन। और सीधे चलते हैं सलमान रावी के पास जो गुरदासपुर में पहुंच चुके हैं और सलमान रावी ने आज घटनास्थल का जायजा लिया और प्रभावित लोगों से भी बातचीत की। सलमान, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पंजाब ने 25 साल बाद फिर से चरमपंथी हमले देखे, क्या माहौल है वहाँ पर?
देखिए, माहौल तो जाहिर सी बात है काफी दहशत का है क्योंकि ये जो इलाका है एक तो ये बॉर्डर से बिल्कुल लगा हुआ है, 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान के साथ जो जुड़ा बॉर्डर है, इस वजह से आज दुकानें भी बंद रही और आज जो है दाह संस्कार भी हुआ उन पुलिस कर्मियों का जो इस घटना में मारे गए थे और दीनानगर पुलिस स्टेशन पर तैनात थे जिस वक्त ये हमला हुआ। इनमें एक होमगार्ड के जवान थे जो दीनानगर के पास में थाने के पास में जिनका घर है, मैं वहां गया था उनके घर पर जिस वक्त ये अतिवृष्टि उनकी हो रही थी। और उसके बाद जो है जो SP मारे गए थे, SP डायरेक्टर बलजीत सिंह, वो उनको जो उनके शरीर को भेज दिया गया उनके पैतृक निवास में। और लेकिन ये है कि उसके बाद आज सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम के जो एक्सपर्ट थे वो थाने में पहुंचे थे, तीनों जो आतंकी हैं उनकी लाशों को बरामद किया गया और उसके बाद सीधे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हालांकि ये कल से ही वहीं पर पड़ी हुई थी और बहुत सावधानी के साथ, चूंकि काफी मात्रा में विस्फोटक वहां पर थाने के अंदर मौजूद था जिसमें कई हद गोले थे यानी ग्रेनेड, और उनको डिफ्यूज करने का काम किया गया। बीच में ये अफवाह भी उड़ी के फिर से धमाका हुआ है थाने में, लेकिन मैं मौजूद था उस वक्त दीनानगर थाने में जिस वक्त के इसको डिफ्यूज करके ब्लास्ट करके डिफ्यूज किया गया। और उसके बाद फिर जांच चल रही है, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये जांच करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो असला है, जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह के एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया है, वो कहाँ से कैसे आया, क्या था। प्लस ये भी हो रहे कि जो GPS उनके पास से बरामद हुआ है उसकी भी जो है तफ्तीश की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि ये इनका नेटवर्क कैसा रहा, कहाँ से आए, कौन सा रास्ता इख्तियार किया। और इस बीच में जो SP हैं गुरदासपुर के सीनियर SP गुरप्रीत सिंह, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है जो तीनों मिलिटेंट की जो लाशें बरामद हुई है वहां अंदर से, तो अभी भी ये क्लियर नहीं है कि ये किसकी कारस्तानी है। ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान से क्रॉस हो कर आए हैं, ये भी संभावना है, लेकिन बहुत बारीकी से जांच चल रही है ताकि ये पता चल पाए कि आखिर ये थे कौन।
जी, इस हमले की पूरी जांच चल रही है। ये जानना चाहेंगे कि प्रभावित लोगों से भी आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कहना था?
राष्ट्रीय प्रभावित लोग भी बड़े सदमे में हैं और सकते में भी हैं। सदमे में इसलिए है क्योंकि पास के ही घरों में तैनात जो जवान थे वो मारे गए होमगार्ड के, इसलिए एक गम था। और दूसरी बात यह है कि गुस्सा भी था कि उनका कहना है कि ये बिल्कुल फेलियर है प्रशासन का कि उनको पता नहीं लग पाया कि भाई इतने लोग ये आए कहाँ से और इतना असला लेकर आए जिसमें वो इतनी देर तक सुबह से लेकर शाम में 5 बजे तक वो मुठभेड़ करते रहे पुलिस वालों के साथ। आखिर वो असला लेकर किस तरह से वो मैनेज करके पहुंच पाए दीनानगर थाने तक।
जी बहुत बहुत धन्यवाद, ये थे गुरदासपुर से सलमान रावी। सलमान अपना ख्याल रखिएगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। 1993 के मुंबई बम धमाकों में दोषी पाए गए याकूब मेमन की डेथ वारंट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामला एक बड़ी बेंच के समक्ष भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के इस मामले पर अलग अलग विचार थे और उनकी फांसी की सज़ा को लेकर एक राय वो नहीं कायम कर पाए। हमारे साथ लाइव स्टूडियो में है फैसल मोहम्मद अली। फैसल साहब, ये बताइए कि क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में आज?
सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ थी जिसमें जस्टिस अनिल दवे एक जज थे और दूसरे जज थे जस्टिस कुरियन जोसेफ। दोनों के अलग अलग विचार थे, जाहिर है कि मतभेद है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जस्टिस चीफ जस्टिस H.L. दत्तू जो हैं वो इस मामले पर फैसला करें और जैसा कि आपने बताया कि इस मामले पर एक बड़ी बेंच बनाई जाएगी जो कि इस पर फैसला करेगी। एक जज का ये कहना था जस्टिस अनिल दवे का कि फांसी नहीं रोकी जानी चाहिए। उन्होंने जो कहा उसको बयान को मैं पढ़ूंगा कि अगर राजा गुस्से में दोषी को सज़ा नहीं देगा तो सारा पाप उसके सर आएगा। लेकिन उसके बरक्स जो जस्टिस कुरियन जोसेफ हैं उनका कहना था, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया जो कि याकूब मेनन की प्ली में कहा गया था, अपील में कहा गया था कि प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। तो उनका ये कहना था कि इंसान के जीवन को बचाने के रास्ते में किसी तरह की तकनीकी बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। और याकूब मेमन का ये कहना था कि जो फांसी की सज़ा जो उनको दी जानी थी उसका जो डेथ वारंट है वो उसके पहले जो है इशू कर दिया गया, इसके पहले कि वो सारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको एग्जॉस्ट कर पाते, उसका सहारा ले पाते।
जी, तो ये क्यूरेटिव याचिका पर ही सुनवाई हो रही थी और जिस तरह की आपने बताया कि याकूब मेमन ने कहा कि उन्हें सारी जो मिलनी चाहिए थी अपनी पिटिशंस में वो नहीं मिल पाई। सुविधा
जैसा सुशीला आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई जब हो रही थी उसी वक्त इस बात की घोषणा कर दी थी कि याकूब मेमन को पुणे की जेल में 30 तारीख को होगी और जिसकी तैयारियां भी जैसे कि हमने भी अपनी कहानियों में कहा है कि 30 तारीख को जो फांसी की सज़ा होनी है उसकी पुणे में तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। वहाँ सारे लोग पहुँच चुके हैं, उनके परिवार को याकूब मेमन से मिलने के लिए कहा गया है। याकूब मेमन को 2007 में याकूब मेमन का ये कहना था कि उन पूरी जो फांसी की सज़ा होती है उसकी एक प्रक्रिया है कि पहले एक अदालत देती है फिर उसको हाई कोर्ट से उसको
तो
फिर
वो
से
पूरी प्रक्रिया नहीं हो पाई थी,
नहीं हो पाई थी वो माफ़ी मननामा के लिए जो जाना चाहते थे।
जी बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए फैसल साहब आपका। और बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान को हिरण शिकार मामले में थोड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में 5 गवाहों से दोबारा जरह की सलमान खान की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। सलमान खान लंबे समय से राहत के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। जयपुर से नारायण बारेट की ये रिपोर्ट।
काले हिरण के शिकार के आरोपों का सामना कर रहे सलमान खान की गुहार थी कि 5 गवाहों को फिर से जिरह के लिए बुलाया जाए। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जोधपुर में हाईकोर्ट ने सलमान की याचिका मंजूर कर ली है। इससे पहले सलमान ने निचली अदालत में भी गुहार की थी लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को नामंजूर कर दिया था। इसके बाद सलमान ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और न्याय की गुहार की। अभियोजन पक्ष का कहना था कि आखेट में हथियारों के इस्तेमाल में सलमान ने कानून का उल्लंघन किया है, उन पर लाइसेंस खत्म होने के बाद भी हथियारों के इस्तेमाल का आरोप है। अभियोजन का कहना था कि 5 गवाह अदालत में अपना बयान दे चुके हैं लेकिन सलमान दोबारा जिरह के बहाने मामले को लंबा खींचना चाहते हैं। उधर बचाव पक्ष में सलमान के वकीलों ने कहा कि गवाहों से दोबारा जिरह नहीं की गई तो सलमान के साथ नाइंसाफी होगी। हाईकोर्ट ने अब यह याचिका मंजूर कर ली है। बॉलीवुड स्टार सलमान पर हिंदी फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर के निकट वन्य प्राणियों का शिकार करने का आरोप है। वे आरोपों से इनकार करते रहे हैं। नारायण बारेठ, जयपुर, राजस्थान।
देश दुनिया की खबरें 24 घंटे BBCHindi.com के साथ।
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स या कास्ट ने भारत की धाविका दुती चंद के मामले में IAAF के पाबंदी के फैसले को 2 साल के लिए स्थगित कर दिया है। ये पाबंदी दुती चंद के शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा सामान्य से अधिक पाए जाने की वजह से लगाई गई थी। दुती ने एथलेटिक संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय संघ या IAAF ने जुलाई साल 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेलों के कुछ दिन पहले ही अयोग्य करार दिया था। दुती ने इस फैसले को चुनौती दी थी और अब कास के फैसले के बाद दुती काफी खुश हैं और उन्हें विश्वास है कि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगी। हमारी सहयोगी रूपा झा ने धाविका दुती चंद से बात की और फैसले को लेकर वे कितनी आशान्वित है ये सवाल पूछा।
नहीं नहीं, हारने का तो कभी सोचा नहीं मान मती कि मेरे को पहले ही पता चला था कि मैं ठीक हूँ, मैं कोई गलती नहीं किया, कोई गलती नहीं किया, वो मेरे साथ जो होगा वो सही होगा। वो जज साहब ने बहुत अच्छा है कि मेरी सारी चीज पढ़ाई करके अच्छा से मेरे को न्याय दिया। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ जिस मेरे ऊपर भी जो अत्याचार हुआ इतना अच्छा से नहीं हुआ। मैंने सोचा था नहीं जरूर जीतूंगी मैं।
तो विश्वास था आपको कि आप जीतेंगी?
हाँ जी।
अच्छा, जब ये देखा आपने कि आप अंग्रेजी पढ़ती हैं या किसी ने पढ़ के आपको बताया?
नहीं, मैडम ने मेरे पास थे ना, मैडम ने पढ़ के सारे सुना। 160 का पेज है वो सारी मैडम पढ़ के मेरे को सुनाए। कल सोने के टाइम में 1 बज गया सो।
उसके तो सबसे पहले आपने क्या किया जब आपको पता चला कि आप जीत गई हैं ये केस? तो क्या किया सबसे पहले, क्या किया?
मैडम तो मेरे को फिर बताई दी तुम जीत गई, बहुत खुश लगे। इस टाइम फिर ज्यादा करके खुश लगा क्योंकि जो रूल था वो रूल हटा दिया, जिस कारण से मेरे जैसे जो एथलीट आएंगे खेलने के लिए ट्रैक को, इसको मेरे जैसे दुख सहना नहीं पड़ेगा। और कोई नहीं बोलेगा कि लड़की या लड़का है, जो बुरा बात मेरे को सुनना पड़े वो इनको सुनने के लिए नहीं पड़ेगा।
तो अपने माँ पापा से आपने बात की, अपने परिवार से?
उनको कल में की थी मम्मी के साथ। मम्मी ने कहा कि तुझे कोई टेंशन नहीं, भगवान हमारे साथ थे इसलिए हम जीत गए। तुम अच्छा से करो, सब कुछ भूल जाओ, अभी नया साल का नया ट्रेनिंग शुरू करो, फिर जरूर एक दिन आएगा तुम ओलंपिक जाके पार्टिसिपेट करके मेडल ले सकोगे।
ये जो कानून था जिसके खिलाफ आपने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और पहली बार ऐसा हो रहा है, दुनिया में पहली बार हो रहा है, तो ये साहस कहाँ से आया आपको? क्योंकि बहुत सारे एथलीट तो कहते हैं कि हाँ भाई जो बोला जा रहा है कर लो, यही होता आ रहा है।
नहीं, वो नहीं, मेरे को इसलिए साहस आया क्योंकि मेरे को सब लोग सपोर्टिंग कर रही है किया, क्योंकि मेरे पहले जब ऐसा प्रॉब्लम हुआ मेरे जो स्टेट वाले जितना MP ML है वो सारी आस्था मिल में मेरा क्वेश्चन रहा कि दुती इतना अच्छा लड़की है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे चुका है, कोई डॉक्टर नहीं किया, कुछ नहीं किया, इसको क्यों निकल दिया? ऐसे जो क्वेश्चन उठे से हमारे जो मिनिस्टर उड़ीसा मिनिस्टर उसने बाधा दिया कि दुती का फिर आपको वापस आएगा, फिर से खेल के नाम रोशन करेगा। वही बात फिर दिल्ली में जो हुआ इसमें भी मेरा क्वेश्चन आया, वो मिनिस्टर साहब ने, स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने बोला कि हाँ हम दुती को मदद करेंगे, इसलिए मेरा बहुत साहस आ गया कि मैं तो अकेले नहीं हूँ, कैसे लड़ने के लिए मेरे साथ अकेले नहीं, मेरे साथ तो सब कुछ सब लोग है, फिर क्यों डरूं? फिर इसलिए कोशिश किया कि केस लड़के जीत के दिखाऊंगी।
और आपको अब लगता है कि अब आप और बेहतर परफॉर्म करेंगी क्योंकि अब वो टेंशन नहीं है जो पहले हो रही होगी शायद आपको?
नहीं, वो पहले तो जो परफॉर्मेंस दे रहे थे अभी तो मैं इतना परफॉर्म नहीं हूँ क्योंकि मेंटल टचर में कारण से मैं अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पाई, लेकिन अभी ओलंपिक क्वालिफाई करने के जो 7 महीना मेरे हाथ में है वो अच्छा कर सकती हूँ। लेकिन जो इंडिया गवर्नमेंट अभी जो टॉप स्कीम निकला है, इस चीज टॉप स्कीम में मेरे को US ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाएगा, तो 16 का अकेडमी है यहाँ पे ट्रेनिंग करके आराम से मैं पूरा परफॉर्मेंस और मेरा नया परफॉर्मेंस करके दिखाऊंगी।
इतना लंबा जो केस चला आपका, तो उससे आपका क्या सबसे बड़ा क्या नुकसान हुआ?
सबसे बड़ा तो हमारा बहुत कुछ हमारा ट्रेनिंग लोकसान हो गया, बहुत बुरा बात सुनना पड़ा मेरे को, मैं कहीं जा नहीं पाई और ज्यादा करके मैं जितना नाम कमाया था इंडिया में, चीज इंडिया का स्पिनर दुती चंद है वो अभी नाम का काम सब चला गया, अभी फिर नया मेरे कोशिश करना पड़ेगा, मेरा नया जो ट्रेनिंग फॉर्मेट थी मैं अभी पहले से ट्रेनिंग शुरू करना पड़ेगा, बहुत नुकसान हो गया मेरा, जिस वजह से मैं सबके सामने बुरा हो गया मैंने।
तो धाविका दुती चंद से बात कर रही थी रूपा झा। राजस्थान सरकार ने जब से महिलाओं के लिए नौकरियों में 30% आरक्षण की व्यवस्था की है, बहुत से ऐसे कार्यस्थलों पर महिलाओं को बखूबी काम करते हुए देखा गया है जो अभी तक पुरुष प्रधान ही समझे जाते थे। जून में शुरू हुई जयपुर मेट्रो के कुल 24 मेट्रो ऑपरेटर्स में 5 महिलाएं भी शामिल हैं जो बहुत कुशलता के साथ अपना काम कर रही हैं। जयपुर से आभा शर्मा की ये विशेष रिपोर्ट।
कुसुम, मोनिका, योगिता, ज्योति और मीना, ये उन 5 आत्मविश्वासी महिलाओं के नाम हैं जो इन दिनों जयपुर मेट्रो चला रही हैं। लोगों को मेट्रो में सफ़र का जितना क्रेज है उतना ही बच्चों को उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने का इनमें से एक
कुसुम कंवर बताती हैं।
एक छोटा बच्चा था, अपने पेरेंट्स के साथ आया था। जैसे ही मेरा रिलीवर ने मुझे रिलीव किया तो मैं जब स्टेयर से नीचे आ रही थी तो वहाँ पे उसने मुझे आवाज़ लगाई कि दीदी सुनो। मैंने कहा हाँ बोलो। कि आप चला रही थी ट्रेन? तो मैंने कहा हाँ। तो मुझे उसने ऐसे बोला कि बहुत अच्छी चला रही थी, मज़ा आ गया। तो अच्छा लगा सुन के। फिर
उधर बीकानेर की ज्योति रानी खंडेलवाल को इस बात पर गर्व है कि वे अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। उनके दादा लोको पायलट थे और पिता ताऊ भी रेलवे की सेवा में हैं।
मेट्रो ड्राइव करना, एक तो मुझे सब कहते हैं कि मैंने अपना फैमिली ट्रेडिशन ज्वाइन कर लिया, सबसे बड़ी बात तो मुझे यही लगती है। और मेरी फैमिली में और कोई तो है नहीं, मैं चलाती हूँ तो बहुत खुश होते हैं सब, बहुत प्राउड फील करते हैं और लोगों का रिएक्शन भी आप देख ही रहे हैं।
कोटपुतली की मोनिका मित्तल के भैया उन्हें कार चलाने नहीं देते थे, जिद करके उनसे कार लेनी पड़ती थी। पर अब मोनिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि वो कार से कहीं ज्यादा आसानी से चला लेती हैं मेट्रो।
फोर व्हीलर चलाया है, मेट्रो ज्यादा आराम से चला पा रही हूँ, वो तो इतना आराम से नहीं चलाती थी। उससे मेरा जो भैया है वो बोलता था रहने दे, तू ठोक देगी कहीं पर, रहने दे, वो देता ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से देता था।
जब बीबीसी ने इनसे पूछा कि क्या महिला होना मेट्रो ड्राइविंग में बाधा है, तो इस पर योगिता तिवारी ने बताया,
बिल्कुल ऐसा रहता है ड्राइविंग को लेकर कि महिला, और उसमें भी ट्रेन चलाना, जनता को लगता है कि कैसे काम करते होंगे, बट ट्रेनिंग लेने के बाद में और इतना एक्सपोजर होने के बाद बहुत इजी है।
जब हमने इस पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले मेट्रो यात्री ऋषभ की राय जानी चाही तो उन्होंने कहा,
नहीं जब आदमी में हुनर है तो वो चला सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो कोई बात नहीं है। हमारे देश का राष्ट्रपति वो भी रह सकी है, प्रधानमंत्री वो भी रह सकी है, तो लेडीज जब चला सकती है तो वो भाई क्या चीज है।
यह भी एक सुखद संयोगी था कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मेट्रो के उद्घाटन यात्रा करवाने का जिम्मा भी महिला ड्राइवर्स के ही हाथ था। ज्योति खंडेलवाल ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसा चांस मिलेगा।
मेरे साथी थे सीएम मैम, मैडम को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि लड़कियां ट्रेन चला रही, मैडम तो पूरे टाइम मेरे साथ थी और उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा सिस्टम, हर चीज पूछ रही थी कैसे क्या हो रहा है और तुम कैसे कर लेती हो ये सब।
इन महिला मेट्रो ड्राइवर्स को रोज ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, शायद इतने कि उनके पुरुष सहकर्मियों को ईर्ष्या हो जाए। यदि जयपुर मेट्रो गुलाबी शहर का नया आकर्षण है, तो इस चमचमाती मेट्रो की सबसे सशक्त पहचान है इन महिला ड्राइवर्स की टीम। जयपुर से आभा शर्मा।
आपको आभा शर्मा की ये विशेष रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। और अब खेल समाचारों के साथ लाइव स्टूडियो में हमारे साथ आदेश कुमार गुप्त।
जी सुशीला जी, आज भारत की महिला तीरंदाजी टीम ने रिकर्व टीम वर्ग में अगले साल रियो में होने वाले ओलंपिक खेलों में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने ये उपलब्धि इन दिनों डेनमार्क में आयोजित की जा रही विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में हासिल की। भारतीय टीम ने दरअसल क्वार्टर फाइनल से पहले मुकाबले में जर्मनी को 5-3 से मात दी, हालांकि एक समय भारतीय टीम 1-3 से पिछड़ रही थी। इस टीम में भारत की सबसे अनुभवी महिला तीरंदाज और एक समय दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी रह चुकी दीपिका कुमारी, लक्ष्मी रानी मांझी और रिमिल शामिल हैं। और इसके बाद भी इस टीम ने अपना शानदार सफर जारी रखा और अब वो फाइनल में भी पहुँच चुकी है, इस तरह से उसका पदक भी पक्का है। उधर बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्य भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने भी बीसीसीआई का समर्थन करते हुए कहा है कि सरहद पार से आतंकवाद पर रोक लगने तक पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंध बहाल नहीं किए जा सकते।
बहुत बहुत धन्यवाद खेल समाचारों के लिए। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंच गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि दी। त्रिपोली की एक अदालत ने लीबिया के निर्वासित नेता कर्नल गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम को मौत की सज़ा सुनाई है। राष्ट्रपति ओबामा ने कुछ देर पहले इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में अफ्रीकी संघ को संबोधित किया। इस संबोधन में राष्ट्रपति ओबामा ने व्यापार, सुरक्षा और मानवाधिकारों पर बात की। मिस्र की राजधानी काहिरा में एक फर्नीचर फैक्ट्री में आग लगने से कम 19 लोग मारे गए हैं और 22 लोग घायल हो गए हैं। रूस में विपक्षी दल के 3 राजनेताओं का कहना है कि उन्हें स्थानीय चुनावों में भाग लेने से रोका गया है, इसलिए वे भूख हड़ताल कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी प्रगति सक्सेना। इसी के साथ दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में फिर होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ मुलाकात। तब तक हेमंत कुशवाहा के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।